अगली आयत से एक ऐसा मजमून शुरू हो रहा है जो सूरत बकरा के आखिरी रुकू से पहले तक चलेगा। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से अब रुपए पैसे की बातें शुरू हो रही हैं। इस आयत का अगर आप नंबर नोट कर लेना तो अगली आयतों को भी कहीं ना कहीं पढ़ते हुए इससे रब जुड़ता रहेगा। और इधर एक और भी चीज़ कहती हूँ कि पीछे हमने एक चीज़ देखी थी कि अल्लाह सुबहाना ताला हमें दो तरह की चीज़ों का हुक्म देते हैं सूरत बकरा के आखिर तक। एक थी किताल और एक थी इन्फाक फी सबीलिल्लाह। ये बात याद है किसी को? किताल की बात को वाज़े करने के लिए तालूत और जालूत का वाक्या पढ़ा दिया कि अल्लाह के रास्ते में हालात जैसे भी हों लड़ते रहो। और जो दूसरी बात थी ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह, वो उस बात की अब अमली तफसीर यहाँ से शुरू हो रही है। आइए देखते हैं आयत 254। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने ईमान की कॉल दी है और ये कॉल दुनिया की हर कॉल से खूबसूरत है। किसी को किसी भी नाम से पुकारें उससे सबसे ज़्यादा खुशी इस वक्त होनी चाहिए कि जब लोग उसको ईमान वाला कहकर पुकारें। क्या कहा? अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उस में से जो हमने तुमको दिया। मिन क़ब्ल यातिया यौमुल्ला बैउन फी, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त ना होगी। वला खुल्लतुन, और ना कोई दोस्ती होगी, खुल्लत होगी, आशनाई होगी। वला शफा, और ना सिफारिश होगी। वल काफिरू न हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर तो वही हैं जो ज़ालिम हैं, या फिर काफिर जो हैं वो ज़ालिम हैं, यानी कुफ्र करना जुल्म है। यहाँ अल्लाह ताला ईमान वालों को अपने रास्ते में खर्च करने की दावत देते हैं, क्योंकि जब भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद की बात होगी तो माल की ज़रूरत होगी। और जो माल हमें मिला है ना, वो असल में हमारे पास डिपॉजिट करवाया गया था। आज हम में से जिसके पास जितना भी माल है ना, वो असल में अल्लाह का माल है, उसने हमारे पास डिपॉजिट करा दिया। आपने देखा होगा कि दुनिया में कारोबार चलते हैं या कोई लोग अपनी सेविंग्स रखते हैं तो बैंक्स के साथ अकाउंट्स बना लेते हैं, और हर एक के अकाउंट में मुख्तलिफ माल होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, और जैसे भी उसकी ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। हम जब दुनिया में आते हैं ना, तो हमारा हक नहीं था कि अल्लाह हमें एक पैनी भी देता, क्योंकि हम कुछ दे के नहीं आए। सोचिए ज़रा, एक बच्चा दुनिया में आया, ना उसके हाथ में कोई माल था, माँ के पेट से कुछ लेके आया कि भई ये उसका असल माल था, इसको रख लो, खाली हाथ आता है ना। कुछ अरसा उसकी ज़रूरियात माँ के ज़रिए से पूरी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अब अगर उसको कुछ माल मिलता है, शुरू में माँ बाप की सूरत में, फिर थोड़ा बड़े हुए तो कुछ मेहनत की तो कमाना शुरू कर दिया, और फिर इसी तरह औरतें हैं तो उनको शौहरों के ज़रिए मिलता है। ये सारे माल मिलने के जो तरीके हैं ना, ये मिम्मा रज़क़नाकुम है, हमने तुमको दिया। पहले तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए दिलवाया, फिर तुम्हारे शौहरों के ज़रिए दिलवाया, फिर तुम्हारे बच्चों के ज़रिए तुमको दिलवाया। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम माँ के पेट से खाली हाथ आए थे। क्यों दिलाया? कि तुम इस दुनिया के सफ़र पे निकले हो, कुछ ज़रूरियात होंगी, रख लो, काम आएगा। आप कहते नहीं कुछ ज़रूरत थोड़ी है, मेरी तो ऐसी पूरी होती हैं, तो कहते नहीं रख लो, काम आएगा, अगर ना इस्तेमाल किए तो वापसी पे दे देना वापस। ऐसे होती है ना बातें। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो माल दिया है ना, असल में ये हमारे पास सेव करवाया है। हम अल्लाह ताला के छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, जितने भी इंसान हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं मेरे इस अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दो, इसमें इतने करा दो, इसमें इतने करा दो। ये माल है उसका। अब वो अकाउंट होल्डर हम हो गए, हमारे नाम की चिटें लग गई उस नाम पे। गलती कहाँ होती है कि जब हम उसको अपना माल समझने लगते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो हमारे पास इस वक्त पर्स में या हमारे किसी अकाउंट में जमा है उसको अपना समझते हैं? सारी समझते हैं। आप नहीं समझते, मैं तो समझती हूँ। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आप में से कोई नहीं समझता, तो फिर मान किस बात का है? फिर फख्र किस बात का है? फिर अपनी ज़ात पे लाखों कैसे लग जाता है, और कैसे अकड़ आती है कि हमारे पास इतना है। लिख लें ये बात हम में से जिसके पास जितना माल है उतना बड़ा अकाउंट अल्लाह ने उसके नाम पे अपना खोला हुआ है और उतनी बड़ी जवाबदेही है। अल्लाह ताला ने जब हमारे पास अपना माल रखवाया तो साथ एक रुख्सत दे दी, फरिश्तों को कहा कि इनको दे दो ये चीज़ें, है मेरा लेकिन जहाँ जितना इनको ज़रूरत पड़ेगी ना ये खर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ें, फिर जो आपका सफ़र का खर्च है वो इसमें से ले लीजिएगा, आप अपना कहीं वक्त किसी जगह खाना खाते हैं तो उसमें ले लें। आप शायद ये ज़ुबान समझते नहीं लेकिन कारोबारी ज़ुबान में ये बातें होती हैं। कोई अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे के भेजता है कि जाओ वहाँ से कुछ काम करके आओ, और फिर कहता है कि इन पैसों में कुछ तुम्हें अपनी टिकट खरीदनी तो खरीद लेना, कहीं खाना खाना हुआ तो खा लेना, लेकिन एंड पे हिसाब में लिखा हुआ होगा कि आपने यहाँ लंच किया था, इतने का टिकट आया था, इतने का रात को आपने होटल लेके वहाँ सोए थे, वो एंड पे देखता है मालिक। बस कल क़यामत के दिन हम सब के साथ भी ये होगा, जब हम अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे ना तो अल्लाह ताला हमें कहेंगे लाओ भाई दिखाओ अपने पर्चे, आज तुम्हारा हिसाब होगा, ये मैंने दिया था, इसमें से इतना तुमने अपने पास खर्च कर लिया, अपनी ज़ात पे खर्च किया, इतना तुम्हारी ज़रूरत थी और ये इतना तुमने वापस मुझे दे दिया। दुनिया में दे आएंगे तो बेहतर होगा, और अगर ना दे के अपने नाम के साथ ले आएंगे तो गोया के हमारी हालत उस वर्कर की होगी कि जिसको किसी काम के सिलसिले में भेजा जाए, काम ना करे बल्कि सफ़र के खर्चे और खाना पीना अपने नाम डाल डला के वापस ओनर के पास आ जाए कि भाई क्या किया, तो वो कहे कि किया तो कुछ नहीं है बस खा पी के आ गया हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया में आने का मकसद ही नहीं समझते, और अगर ये नुक्ता आज समझ आ गया ना तो फिर जो मेरे परस में है ना वो मेरा नहीं मेरे रब का है और मैं उसकी टेक केयर कर रही हूँ। फिर इंसान अपनी ज़ात पे नहीं लगा सकता एक्स्ट्रा, फिर वो ये नहीं कहता और किस लिए कमाते हैं, आपने कभी ये जुमला सुना, और हम कमाते किस लिए हैं, ये बच्चों की मासूम ख्वाहिशें ना पूरी करें तो और क्या होगा। बस लोगों के माल का सिर्फ मकसद ही है कि बच्चों को हर दिन नया खाना खिलाया जाए, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए, बस सोचते हैं बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजना यही तो है मकसद, और अक्सर का ये है कि बच्चों की शादियाँ और उनके अपने घर बनाने, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अल्लाह ताला ने जो हमको दिया कहा अनफिकू खर्च करो, आप उस फीलिंग को लाएं ज़रा जहन में कि आपके किसी का माल पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि इसको जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करके आओ, इधर देना उधर देना उधर देना, हाँ वक्त लगेगा भूख लगी तुम भी खा लेना। अब उस बंदे का जो माल को बांट रहा है उसका सबसे ज़्यादा हदफ क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी माल दूँ ना, क्योंकि मेरे पास राह चोरी हो सकता है गुम सकता है तो मैं ओनर को क्या बताऊँगा। यही वो सोच है जो सहाबे कराम की थी, और उनको ये हकीकत समझ आ गई थी कि जो माल मेरे पास है ना ये अल्लाह की अमानत है, अगर मैंने उसकी मर्ज़ी से मुख्तलिफ जगहों पे नहीं दिया ना तो चोरी भी हो सकता है गुम भी हो सकता है और फिर मुझे देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक मौके पर नमाज तैयार थी, लोग सफ़े बांधे हुए थे और आपने कहा ठहर जो मैं आता हूँ, आप वहाँ से निकले गए थोड़ी देर अपने हुजरे में हो के वापस आ गए, लोगों ने कहा क्या मामला हुआ, कहा कि वो मुझे यहाँ खड़े खड़े याद आ गया कि घर में सोने की एक डली रखी थी तो मैंने सोचा कि मैं वो दे आऊँ इससे पहले कि कहीं मोहलत ख़त्म हो जाए। अब ये बात है बड़ी मुश्किल, समझनी बड़ी मुश्किल है लेकिन समझ आ जाए ना तो बंदा जितनी दफ़ा अपनी चीज़ों को देखता है ना तो वो अल्लाह को ये कहता है अल्लाह मैं ये इस्तेमाल तो कर रही हूँ लेकिन ये है असल में तेरी, जहाँ मौका मिला ना तुझे या तेरे किसी बंदे को ये मेरे परस से निकल के उधर चली जाएगी, ये मेरे हाथ से निकल के उस पर चली जाएगी लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस सोच को देखें तो अल्लाह ना आपको खाने से मना करता है ना पहनने से मना करता है, मसलन अगर आपके पास कपड़े हैं मना नहीं करता, लेकिन वो कपड़े जो आप पहन नहीं रहे ना वो मुश्किल में डालेंगे कल आपको, वो जेवरात जो आपके लॉकर्स में रखे हुए ना सिर्फ इस ख्याल में कि आपके पास इतने तोले सोना है वो कल पूछेगा आपको, आप पहन रहे हैं आपका शौक है आपको दिल करता है अल्लाह का हुक्म है पहन लें। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि जो खा लिया उसका हिसाब नहीं, जो पहन लिया उसका हिसाब नहीं, और वो घर जिसमें उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली उसका हिसाब नहीं है, बाकी चीज़ों का मसला होगा। और यकीन करें हमारी ज़िंदगी की 90% मुश्किलात किस चीज़ में, जो हमने एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स रखे हुए हैं। हमारी सफाई घर की मुश्किल क्यों है कि घर में एक्स्ट्रा सामान बहुत है, हमारे कपड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा हैं पहनने वाले कम हैं, आज भी अगर आप अपनी ज़रूरत के तीन चार जोड़े एक मौसम के लगा लेते हैं, आप उस सीज़न में इतनी दफ़ा पहन लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको लगता है कि हक अदा हो गया, अब किसी और को आप दे सकते हैं। आप सोचें ज़रा, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोगों के पास अपनी शादी का जोड़ा भी पड़ा होगा, जो आपने इस आस में रखा हुआ है कि अपनी बहू को पहनाएंगे, और बहू ने पहले दिन पकड़ के वो बाहर रखना कि अम्मा यही रह गया था मेरे लिए। और वो औरतें जो अपने जेवरात शादी के मोटे झुमके उनके पड़े हैं वो रखे हुए हैं कि बहू को पहनाऊंगी, बेटी को दूंगी, और वो कहेंगे अच्छा अम्मा आप तो नए फैशन के जेवर पहने और मुझे पुराने पहनाती हैं। फिर रंजिशें, फिर रुकावटें, इसी से दिल खट्टे होते हैं। बेटी को दिया तो नया जेवर दिया, और मेरा बनाया तो वही पुराना जेवर पॉलिश करा के दे दिया। आपको किस बात की सजा मिली? इस बात की मिली कि आपने उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। तो बहरहाल ये बात जितनी समझ आती है उतनी जल्दी इंसान की ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि यहाँ तो ये बात लिखी है कि मिन क़ब्ल याति यौमुल्ला बय्युन फी, उससे पहले खर्च कर दो कि जिस दिन फिर तिजारत नहीं होगी। क्या तिजारत नहीं होगी? यही माल ले के उस दिन फिरोगे कि कोई ले ले मुझसे अल्लाह के रास्ते में, और आज मैं बच जाऊँ तो कोई कहेगा नहीं। आपको पता है कि क़्यामत से पहले दुनिया में ज़मीन सोना उगलेगी, और हदीस में आता है कि जब चोर गुजरेगा तो उसको अपने इर्द गिर्द सोने के पहाड़ देखेंगे और अपना हाथ लटकता हुआ देख के कहेगा हाय काश मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता, मैंने अपना हाथ ज़ाया कर दिया और आज माल खुला पड़ा हुआ है। एक वक्त दुनिया में ऐसा आएगा कि कोई सदका खैरात लेने वाला ही नहीं होगा। उस वक्त इंसान अफसोस करेंगे कि हमने हराम कमाने में क्यों अपने आप को गुनाहगार किया, हम थोड़ा सा सब्र कर लेते ये हमें मिल जाना था। और यहाँ इस आयत को पढ़ के तो ये लगता है जैसे एक्सपायरेशन डेट आ गई। आपके घरों में कई चीज़ें होती होंगी, खाने की, पीने की, क्रीम, दूध, अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़रों से ओझल हो जाए कि जिसकी डेट एक्सपायर हो गई, कितने दुख के साथ आप उसको ट्रैश कैन में फेंकते होंगे, हाय मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, खुद ना खाती किसी को दे देती, ऐसा होता है ना। क़यामत के दिन भी यही होगा के मिन कब्ल याति या यौमुल्ला बय्युन फी। और ये क़यामत के वक्त नहीं होता, ये मौत के वक्त होता है। जब एक बंदे की रूह कब्ज़ की जाती है तो फरिश्ते उसके पास आते हैं कि अपनी जान दे दो, तो उस वक्त वो कहता है कि फरिश्तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं वापस जाके ये माल अल्लाह को दे आऊँ और वापस आ जाऊँ। सूरत अल मुनाफिकून की आयत है, आयत नंबर 9 से आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो कोई ये करेगा बस वही खसारा पाने वाले हैं। वन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ख़र्च करो उस में से जो हमने तुमको दिया इससे पहले कि आ जाए तुम्हारे पास मौत। इसको सुनते वक्त अगर हम सब अपने आप को अपनी निज़ा की घड़ियों में महसूस करें तो बात जल्दी समझ आएगी। किसी को मौत आए, फ़यकूला, फिर वो कहेगा रब्बी लौला अख़्तनी इला अजलिन क़रीब, ए मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं दी, यानी कुछ घंटे मेरी मौत को डिले कर दे, पोस्टपोन कर दे। क्यों, क्या करना है? कोई गुनाह की बात, कोई फ़न, कोई और नहीं, दो ख्वाहिशें करता है दुनिया से जाता हुआ इंसान। फ़सद्दका, मैं सदका करूँ, माल के ढेर पड़े में, मैंने तो अपनी ज़ात पे भी नहीं लगाया, मैंने तो अपनी दीनी ज़रूरियात पे भी रोते भोते ही लगाया, मैं तो उसमें भी चाहता था ना ही लगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दें मैं ज़रा अपने माल को सदका करके आ जाऊँ। वह अकुम मिनस सालेहीन, और नेक बन जाऊँ। बड़े इरादे थे नेकियों के, बड़ी पोस्टपोन नेकियाँ थीं, मैंने सोचा हुआ था वह मैं नेक हो जाऊँगा लेकिन मैं नहीं हुआ, अब मुझे मोहलत दे कि मैं अपना सदका करके माल को अल्लाह के रास्ते में दे आऊँ और नेकियों की जो नीयतें थी उस पर अमल कर रहा हूँ। अच्छी नीयत है ना, कोई बुरी ख्वाहिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जवाब क्या आएगा? वलई युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, और हरगिज़ नहीं मोहलत देगा, ताखीर करेगा अल्लाह किसी नफ्स के लिए। इज़ा जा अजलुहा, जब उसकी अजल आ जाएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो तुम अमल करते हो। तो बस एक मौका है हम सब के पास खर्च का। कभी किसी के पास कोई ऐसा नोट या सिक्का हो जो अब अगले महीने से नहीं चलने वाला, गवर्नमेंट कुछ नोट बंद कर देती है, फिर ऐलान होते हैं वट एवर कि इसको इस्तेमाल कर लें, बैंक में दे के दूसरा ले लें, इस डेट के बाद یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اگر کسی کو وہ اعلان نہ پہنچے یا کوئی کیئر نہ کرے تو اس دن جس دن سے وہ ختم ہو گیا وہ نہیں چلتا، وہ بینک کو جا کے دے گا نا، تو وہ بالکل کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، ہماری موت کی جو کیفیت شروع ہوتی ہے نا، جس کو نزا کہتے ہیں، اس وقت ہمارے پرس کے نوٹ اور اس ٹیشو پیپر کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جیسے اس ٹیشو کا آپ یوز کریں نہ کریں، اس کو کئی دفعہ پھینک دیتے ہیں نا، اس طرح ہمارے سارے بینک بیلنس ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، کیونکہ ایکسپائر ہو گیا، نوٹ بدل گئے، وہ اس دنیا میں خرچ کرنے کے لیے اللہ نے دیے تھے، اس کے بعد نہیں ہوتے۔ جیسے بات شروع میں کی نا کہ اللہ نے ہمیں یہاں خرچ کرنے کے لیے یہ نوٹ دیے ہیں، اس کو اب واپس کیسے کرنا ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہی ہماری موت قریب آتی ہے نا، تو وہ ہمارا اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتا ہے۔ ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کی دیتے ہیں، جیسے آج کل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، جیسے یہ کارڈز ہوتے ہیں نا، آپ کے کریڈٹ کارڈ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، اسی کو چابی کہتے ہیں، وہ جب ڈالتے ہیں نا تو وہ اس میں چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے آج سے لے کے کل تک کے لیے بکنگ کرائی ہے نا 12 بجے، کل 12 بجے سے پہلے پہلے وہ کارڈ آپ 10, 20, 50 دفعہ بھی اس میں ڈال کے کمرے میں جائیں آئیں جائیں آئیں، کوئی حرج نہیں۔ جو ہی وہ ٹائم ایکسپائر ہوتا ہے نا، آپ اس کارڈ کو 10 دفعہ بھی ڈالیں، آپ کا کمرہ آپ سے نہیں کھلے گا، اور وہ آپ اس کو ٹریش کر دیں، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو اس لفظ پہ غور کرنا ہے کہ میری مہلت کہاں ختم ہو رہی ہے، کوئی ٹریڈنگ نہیں۔ اور یہاں بیعن کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن یا موت کے وقت انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ یہ لے لے تو مجھے چھوڑ دے، یہ لے لے تو چھوڑ دے، یہ بارگیننگ ہوتی ہے۔ یہ بھی سورۃ معارج میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن انسان اللہ تعالیٰ کو پیشکش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ بھی لے لے، وہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن انسان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ زندگی بھر جو اس کو کہا تھا اس نے وہ نہیں کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرا چکا۔ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں، ولا خلتن، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ یہ دوستی کی بات یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ دنیا میں جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے نا، تو دوست کام آتے ہیں کہ چلو بھائی تمہاری جگہ میں کر دیتا ہوں، میں اپنا نام ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا۔ کہا اس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ معارج میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست بھی کسی گہرے دوست کی مدد نہیں کرے گا۔ ولا شفا، اور کوئی سفارش تو چلے گی نہیں کہ کوئی کسی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے اور اس کو لے لے۔ اور والکافرونہم الظالمون، اور کافر تو ظالم ہیں۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ سوچئے ذرا، ٹیکسٹ کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں کافر لفظ کے ساتھ فوراً نان مسلم آتا ہے، حالانکہ یہاں کافر اصطلاحی کافر نہیں مراد، مانوی کافر ہے، جو انفقوا مما رزقناکم کا کفر کرتا ہے۔ سورۃ معارج کی آیت نمبر 10 سے بات شروع ہوتی ہے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور نہ پوچھے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو کہ کس حال میں ہو، کیا بنا، آج یہاں کیوں کھڑے ہو۔ حالانکہ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو، میدان محشر میں سب دیکھ رہے ہوں گے، وہ وہاں پھنسا ہوا ہے، وہ وہاں ہوا ہے، وہ اس کاؤنٹر پہ کھڑا ہے، اس کو وہاں سامان کی وجہ سے پکڑا گیا، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ بھی مدد نہ کریں گے۔ یا ود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم چاہے گا کاش فدیے میں دے دے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹے کو۔ یعنی یہ جو بیعن کیا ہوگی اس دن، اے اللہ یہ ہے میرا بیٹا، بڑا پیارا تھا مجھے، اس کے لیے میں بڑی حرام کماتا تھا کہ اس کو اچھا رکھوں، یہ پکڑ اس بچے کو، اس کو ڈال آگ میں اور مجھے چھوڑ دے۔ پہلے بیٹے کا نام آتا ہے، کیونکہ انہی کی محبت زیادہ ہوتی ہے نا۔ نہیں مانی، نہیں نہیں، تو کہا بس صاحبتی ہی و اخی، یہ میری بیوی کھڑی ہے، اس کو پکڑ، یہ مجھے مجبور کرتی تھی غلط کاموں پہ، اور یہ کھڑے ہیں میرے بھائی اخیق، وہ فصیلتی ہلتی تو بھی، اور میرا کنبا، برادری، خاندان، جو مجھے بڑی جگہ دیتا تھا، یہ بہت میٹر کرتا تھا، میں اس کو بڑی اہمیت دیتا تھا، میرے سارے خاندان کو پکڑ، ان کو نہیں تھا میں ناراض کر سکتا، تجھے کر دیتا تھا۔ मन फिल अर्दी जमीयन। अच्छा, इन सब से बात नहीं बन रही, तो जा सारी दुनिया के लोगों को पकड़, इनको डाल आग में, सुम मयुन जी, और फिर मुझे निजात दे दे। ये होगी भाई उनके आमद के दिन ट्रेडिंग, इसको ले उसको दे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएंगे, हरगिज नहीं, कल्ला इन्नहा लज़्वा नज़्ज़ातल लिश्शवा तदु मन अदबरा वतवल्ला। ये तो आग है जो चेहरे की खाल को भूनेगी और हर उसको बुलाती है जिसने मुंह फेरा और पुश्त फेरी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अपना नफा नुकसान समझ में आ जाए। जी, इनका सवाल है कि जो जेवर हम पहनते तो नहीं लेकिन रखा हुआ है और उस पर ज़कात देते हैं, तो क्या उसको अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। देखिए, ये दर्जे होते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। गुनाह तो बिल्कुल नहीं। हर वो माल, असबाब, कपड़ा, जेवर, यानी हर वो चीज़ जो रीसेलेबल है, अगर आप उस पर साल के बाद ज़कात दे देते हैं, इसमें कोई हरज नहीं और इजाज़त भी है, गुनाह भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें मुश्किल का हो जाती हैं कि जब इस्लाम को ज़रूरत पड़े और आपके पास रखा हुआ था। एक तरफ इस्लाम का मुस्तकबिल ख़तरे में है, मिसाल दे रही हूँ, किसी मौके पे अल्लाह के नबी के दौर में तो ऐसा बहुत था, और एक वो वक्त है कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए रखा हुआ है। तो जिसको जो ज़्यादा प्यारा होगा ना, वो फैसला करेगा। ठीक है, डिफरेंट लोगों के दर्जे हैं। अबू बकर सिद्दीक तबूक के मौके पे पूरे घर का सामान ले आए, लेकिन उस वक़्त मदीना में और हज़ारों सहाबा भी तो मौजूद थे ना, सब नहीं लाए, तो क्या वो गुनाहगार हुए? नहीं गुनाहगार हुए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक आगे निकल गए ना। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, हर चीज़ गुनाह की नहीं होती। और एक और छोटी सी बात कह दूं कि गुनाह और चीज़ है और हिसाब और चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि हिसाब हो और फिर गुनाह भी हो। ठीक है, तो जो कुछ हमारे पास होता है उसका हिसाब तो फिर देना पड़ेगा ना। जी, इनका सवाल बहुत अच्छा है कि बीच में बात हुई थी कि जो खा लिया उसका हिसाब नहीं, जो पहन लिया उसका हिसाब नहीं, तो फिर जो खाते पीते हैं उसका क्या होगा? देखिए, आपने खाना खाया, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी, आपने नेकी की, आप कुरान पढ़ने बैठे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इन लुक्मों का हिसाब नहीं लेगा। आपने जो कपड़े पहने, उसके अंदर आपने नमाज़ पढ़ी, आपने हुकूकुल इबाद पूरे किए, कुरान पढ़ा, उन कपड़ों का हिसाब नहीं होगा। मसला कहाँ बिगड़ेगा कि जब आप खूब खाते और पीते और ऐश और इसराफ करते और नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। ठीक है, तो खाना पीना बिल्कुल अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी ताकत, उसकी एनर्जी से फिर आप काम क्या करते हैं, वो मुश्किल बात है। ठीक है जी, इनका सवाल ये कि खाने में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे चॉकलेट्स और इस तरह एक्स्ट्रा, जिसको आज स्नैक्स कह लें या एक्स्ट्रा फूड है उसका। देखिए, खाना जितना भी खा सकते हैं खाएं, ज़ाया नहीं कर सकते। और एक और बात याद रखें, ये एक पूरा सर्कल है। अब मैं इस वक्त अगर आपको वो बयान कर दूं, आप जो खाएंगे ना उसका असर आपके बाकी अमलों पे आ जाएगा। मिसाल है, आप बहुत चॉकलेट खा रहे हैं, बहुत कोक पी रहे हैं, बिलफर्ज मिसाल दे रही हूँ, या फूड से एक्स्ट्रा महंगा खा रहे हैं आपका खाना। मिसाल है कि आप $5 में भी खाना खा सकते थे लेकिन आपने $50 में खाया, मिसाल दे रही हूँ ना। आपने पेट भर के खाना खाने के बजाय ये इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें खाई जो महंगी भी थी और एनर्जी भी नहीं दी। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? आपको नींद ज़्यादा आएगी। ठीक है, आपका पेट खराब होगा, उससे आपकी इबादत कमज़ोर हो जाएंगी। सिंपल लिविंग होगी ना, सादा खाना खाएंगे ना, तो आप दूसरी नेकियां ज़्यादा कर लेंगे। तो इधर चॉकलेट खाने का शायद आपको गुनाह ना हो, लेकिन इसका दूसरी तरफ असर ये निकलेगा कि आपकी इबादत कमज़ोर हो जाएगी, यानी आपने नेकी में कमी कर ली ना अपनी। तिलावत सुनेंगे इन आयात की।
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة مَوْلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.